من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العظيم حجة ابن الحسن العسكري وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ونعمة دائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سورہ مبارک نور کی 11 نمبر کی آیت سے لے کر تقریباً 16 نمبر کی آیت اور اس کے بعد بھی کچھ آیات ایک اہم مطلب کو بیان کرتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس اہم مطلب کو بیان کریں، ان آیات کا ایک مرتبہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے. افق یعنی بہت بڑی تہمت. وہ لوگ جنہوں نے بہت عظیم تہمت لگائی، یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو تم ہی میں سے ہے. لیکن یہ خیال نہ کرو کہ یہ ماجرا تمہارے لیے برا تھا، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. جس کسی نے بھی اس عمل میں جس قدر حصہ لیا ہے، اسی قدر گناہ اس کے ذمے ہے. جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے ذمے لیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جس وقت تم نے یہ تہمت والی بات سنی، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نیک گمان کیوں نہیں کیے؟ یعنی اس تہمت کو سن کر انہوں نے منفی رویہ کیوں اختیار کیا، اسے مثبت تحلیل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ایک تہمت ہے، ایک جھوٹ ہے اور واضح اور آشکار قسم ہے؟ ان لوگوں نے چار گواہ کیوں پیش نہیں کیے؟ اب جب وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکے، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، تو تمہارے اس خود کردہ گناہ پر تمہیں سخت عذاب پہنچتا. وہ وقت یاد کرو جب تم اتنے بڑے جھوٹ کے پیچھے چل پڑے اور تمہاری ایک زبان سے یہ جھوٹ دوسری زبان تک پہنچتا چلا گیا، معاشرے میں افواہ کی صورت میں پھیل گیا، اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہتے رہے جس کا تمہیں یقین نہیں تھا، اور تم اسے ایک معمولی سا مسئلہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے. تم نے اسے سن کر یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم یہ بات کریں؟ خداوند تو منزہ ہے، یہ بات جو کہی گئی ہے یہ ایک عظیم بہتان ہے. قضیہ عفق ایک واقعہ اور قصہ ہے کہ جو اس سورہ نور میں آیا ہے. اس واقعہ عفق کے بارے میں مختلف شان نزول نقل ہوئی ہیں، एक शार नजूल है कि जो तकरीबन तमाम अहले सुन्नत के मुफस्सरीन ने नकल किए, एक शार नजूल है जो शिया मुफस्सरीन ने नकल किए, लेकिन महसूस ये होता है कि ये दोनों शार नजूल ज़ाहिरन सही नहीं है, इसलिए कि इसमें ऐसे मतालिब मौजूद हैं कि जो काबिल एतराज़ हैं। लिहाजा उस शान नज़ूल को बयान करते हैं कि ये आयात जो बाप इफ को लेके आई हैं, इफ के माने यानी तोहमत। मसला शुरू हुआ एक तोहमत से, जो शान नज़ूल इन आयात की बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में आई हैं और सब लोग तकरीबन मुत्तफिक हैं, वो वाकया ये है और इस वाकये को उन्होंने जनाब आयशा से नकल किया है तमाम मुफस्सरीन ने, और ये इफ का वाकया भी इस शान नज़ूल में जो अहले सुन्नत के यहाँ नकल हुई है और जनाब आयशा से ही नकल हुई है और जनाब आयशा के ही बारे में है। ये खासियत इफ, इफ यानी तोहमत, इसका खुलासा ये है कि वो खुद ये बयान करती हैं कि रसूले गिरामी की ये सीरत थी कि आप जब भी जंग पे जाते थे तो किसी न किसी अपनी जौजा को साथ लेके जाते थे और उसका तरीक़ेकार ये था कि वराकशी की जाती थी, जिसका नाम बरह में निकलता था उसे आप अपने साथ ले जाते थे। इस दफ़ा वरा जो है वो जनाब आयशा के नाम निकला और आप उन्हें अपने साथ जंग पर ले गए। जंग से वापसी पर ये वाकया पेश आया, जब इख्तिताम पसीर हुई लश्कर वापस आने लगा मदीने की तरफ, एक मकाम पर पड़ाव डाला गया, रात का वक्त था और लश्कर जो है वो जब रुक गया तो जनाब आयशा ये कहती हैं कि उनको हाजत महसूस हुई और वो लश्कर से दूर हो गई और दूर चली गई। जब वापस आई तो इन्हें महसूस हुआ कि इनके गले का जो हार है वो मसलन टूट के गिर गया है, वो उसकी तलाश में दोबारा गई। अब जब आई तो देखा लश्कर जो है वो आगे चला गया है, यानी उस मकाम पर जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ नहीं है, और ये अकेली वहाँ मसलन सहरा में खड़ी है। तो इन्होंने ये सोचा कि ठीक है, शायद वो ये समझकर कि मैं महमिल पे हूँ, और ये अय्याम वो अय्याम थे कि आयत हिजाब नाज़िल हो चुकी थी, हिजाब वाजिब हो चुका था, जैसे कि हिजाब शर्ई तौर पर करना चाहिए, तो मैं इस सफ़र में एक महमिल में बैठा कर ले जाई गई और वापस लाई जा रही थी। वो महमिल जो है वो शतर से ऊँट से नीचे उतारा गया, लोगों ने समझा कि मैं इसी में बैठी, और उन्होंने उस महमिल को दोबारा ऊँट पर रखा और वो उस महमिल को मदीने ले गए, ये समझ कर कि मैं भी उसमें हूँ। दरअसल कि मैं मसलन रफ़ हाजत के लिए चली गई थी। अब उसकी वजह क्या है कि वो जब उन्होंने उठा के रखा, इसकी वजह भी बयान की इस वाकये में कि उन्हें ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि इस महमिल में कोई आया थी। तो उसका जवाब ये है कि उन्होंने खुद दिया है कि उस ज़माने में सख्ती थी, सख्त हालात थे, खाना भी वाफिर नहीं था, तो ख्वातीन का वजन कम हो गया था, यानी उनका भी वजन इतना नहीं था कि महमिल उठा के रख दी गई, पता नहीं चला उठा के रखने वालों को कि इसमें वो बैठी है या नहीं बैठी। बार महमिल को ले गए, अभी सहारा में खड़ी हैं। इन्होंने ये सोचा कि जब ये वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे कि नहीं है तो आएंगे तलाश करते हुए और फिर मैं चली जाऊँगी। और आप जो है इन्होंने वहाँ सहरा में गुजारी और जब दिन तुलू हुआ तो देखा कि एक सवार और आ रहा है, जो कि किसी लश्कर का हिस्सा था और पीछे रह गया था किसी वजह से, उस शख्स का नाम रिवायात में या इसी शान नज़ूल में जनाब आयशा से ही सफवान नकल किया गया। वो आया और उसने जो है वो इनको पहचान लिया और अपने ऊंट को उसने बिठाया और इनको सवार किया और इन्हें मदीने की तरफ लेकर चला। अब जब ये मदीने पहुंचते हैं तो मुनाफिकीन के एक ग्रुप ने जो है वो बद किरदारी या बदफेली की नस्बत जो है वो फैलाना शुरू की माशरे में मदीने की, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक इशू बन गया जिसे आज की इस तरह में कहना चाहिए, एक इशू जो मदीने में गर्म हो गया। इस रवायत में ये भी आया है कि इसे फैलाने वाला जो है वो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्लाह इब्न उबई, उसका नाम था, और उसने इसे फैलाया। यहाँ तक कि ये अफवाह जो है वो पूरे मदीने में जो है वो आम हो गई। ये मदीने जाकर बीमार हो गई, कुछ अरसा बीमार रही, बीमारी से लिफाफा हुआ तो अपने घर तशरीफ ले गई, घर वालों से पूछा कि क्या आजकल मसाइल है, तो उन्होंने ये बताया कि आपकी नस्बत से माशरे में ये बातें घूम रही हैं, और जाहिर है वो घर वाले थे तो उन्होंने ये मसलन ताबील की कि आप के नबी की बेटी है, नबी की बीवी हैं और एक अहम मकाम आपको हासिल है, और जो जिनको अहम मकाम हासिल होता है उनसे लोग और ख़वातीन दूसरी हसद करती हैं, हसद की बुनियाद पर आपके खिलाफ मसलन इस तरह की अफवाह फैलाई गई। ये चंद दिन की बात है, गुजर जाएगी, मसलन इसकी ज़्यादा परवाह न की जाए। बहरहाल ये बात उनके घर वालों ने कही, वो दोबारा घर आई, देखा कि रसूल गिरामी के रवैये में तब्दीली आ गई और अब वो पहले जिस तरह से खुश अखलाकी से मिलते थे या बात करते थे वैसा उनके रवैये में नहीं रहा बाकी, तो इनको और ज़्यादा एहसास हुआ और ये दोबारा बीमार हुए। अब ये माजरा जो है वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक के मसला जो है वो पहुँच गया इस नुक्ते पर कि रसूल गिरामी ने उसामा इब्न ज़ैद और अमीर अल-मोमिनीन से मशवरा किया। ये सब वाक़या है जो शान नज़ूल में आया है, हकीकत है या नहीं ये बात में तहकीक करेंगे, लेकिन ये नकल हुआ है यहाँ तक कि आपने इन दोनों से मशवरा किया कि भाई ये मामला है, इसके बारे में क्या कहा जाए। उसामा ने मशवरा दिया कि ये तोहमत है, झूठ है, अम्बिया की ज़ौजात ऐसी नहीं होती हैं, लिहाजा आप तवज्जो न दें। अमीर अल-मोमिनीन की नस्बत ये कहा गया कि आपने जो है वो फरमाया कि इस बारे में तहकीक कीजिए, ये मसला है क्या, और शायद इसी बुनियाद पर बाज़ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जनाब आयशा को अमीर अल-मोमिनीन से जो है वो मसलन कीना ईजाद हुआ। इस कीने की बुनियाद ये नहीं है अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नस्बत, बल्कि वो उसकी बुनियाद वो हकीकी फ़ज़ाइल हैं अमीर अल-मोमिनीन के जो सुबह शाम वो देखती थी, और उनके ख़ानदान में से किसी को ये फजीलत हासिल नहीं थी जिसकी बुनियाद पर हसद पैदा हो। बहरहाल ये तयशुदा बात है कि अहले बैत की नस्बत इन तमाम लोगों ने हसद किया है, और ये قرآن کریم کی آیات میں بھی آیا ہے ہم یا حسدون الناس علما اتاہم اللہ من فضلہ، آیا لوگ حسد کرتے ہیں ہم لوگوں سے جنہیں خدا رب العالم نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، اور روایات میں بھی آیا ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نحن محسدون، ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا. پر یہ وہ واقعہ اور شان نزول ہے جو جناب عائشہ سے نقل ہوا ہے اس واقعہ افق یا ان آیات کے ذیل میں، کہ جو آیات افق کہلاتی ہیں. افق یعنی تہمت، یعنی بڑا جھوٹ. آپ اگر کسی کتاب میں کسی تفسیر میں ملاحظہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو جو ہیڈنگ نظر آئے وہ واقعہ افق، حدیث افق کے نام سے مثلا کہیں پر آپ کو ہیڈنگ نظر آ سکتی ہے، اور اس کی بنیاد یہ لفظ ہے جو آیت میں آیا ہے. یہ لفظ آیت میں آیا ہے، الذین جاؤوا بالافق، لفظ افق آیت میں آیا ہے. بس دیکھیں اس واقعے میں کہ جو فقط ایک افواہ کی صورت میں معاشرے میں رائج ہوا، کئی باتیں سامنے ہیں. ایک یہ کہ رسول گرامی کا رویہ بدل گیا. رسول گرامی معصوم ہے، ایک امام، ایک معصوم، ایک نبی ایک افواہ سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر وہ افواہ سے متاثر ہونے لگے تو پھر شرعی موازین کے ہیں. ابھی پچھلی چند آیات میں کہا کہ چار گواہ لاؤ، اگر کوئی کسی کی تہمت لگاتا ہے چار گواہ لائے، اگر چار گواہ نہیں ہے تو وہ خود ٹھیک ہے، اس نے قصد کیا ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، اور جو تہمت لگاتا ہے اس کے سزا جو ہے وہ 80 کوڑے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. بس ایک افواہ پر رسول کا کام دھرنا، متاثر ہونا، تحقیق کرانا، مشورہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر ثابت جب نہیں ہوا تو جنہوں نے مثلا یہ تہمت لگائی تھی ان پر تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ نے اس واقعے اس کے بعد حد جاری کی، ایسا بھی نہیں ملتا. بس یہ وہ تمام باتیں کہ جو اس قصے کو کیا کہتے ہیں ہلکا قرار دیتے ہیں، یعنی یہ واقعیت نہیں رکھتا، یعنی یہ شان نزول جو بیان کیا گیا ہے واقعاً ایسا ہے، مشکل ہے. اس لیے کہ رسول گرامی کی عصمت کے خلاف ہے اس میں باتیں کہ آپ متاثر ہو گئے، آپ جو ہے آپ کا رویہ بدل گیا، آپ نے تحقیق کی، مثلا آپ کے ذہن میں بات آئی کہ تحقیق کی جائے. بس یہ ایک شان نزول ہے ان آیات کے بارے میں جو واقع ہوئی. دوسری شان نزول شیعہ کتابوں میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک زوجہ ماریہ قبطیہ کہ جو غزوہ بن مصطلب میں وہاں کا جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی، آپ کو دی گئی اور وہ بعد میں مسلمان ہوئی، اور آپ سے ماریہ کے یہاں ایک اولاد بھی پیدا ہوئی جس کا نام ابراہیم تھا. اس شان نزول میں آیا ہے کہ جناب عائشہ نے ماریہ قبطیہ پر تہمت لگائی، اور وہ تہمت یہ ہے کہ ماریہ قبطیہ کے یہاں اولاد پیدا ہوئی جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، اور وہ اولاد بھی مثلا بچپن میں ہی دنیا سے چلی گئی رسول گرامی، اس کی وجہ سے غم زدہ ہو گئی. جب آپ غم زدہ ہوئے تو جناب عائشہ نے رسول گرامی کے دل کو بہلانے کے لیے مثلا کہا کہ آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں، इसलिए कि ये बच्चा आप तो आपकी औलाद ही नहीं था। अगर दुनिया से चला गया तो क्या, इब्राहिम आपकी औलाद ही नहीं था। ये तो फलान जरीह नाम का एक शख्स है, उसकी औलाद था, जरीह खबती। इसके बाद रसूल गिरामी ने फिर इस मसले में अमीर उलमोमिनीन सलाम से मशवरा किया। आपने कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं उसको लेके आता हूँ और हुक्म दे तो मैं उसे कत्ल करता हूँ। अब देखें यानी ये तमाम चीज़ें साबित हो गई हैं। ये इस एक तोहमत से उसका नाउज़बिल्ला बद किरदार होना साबित हो गया, जरिए फर्ती का कि मुझे भी कत्ल भी हो जाए और आप हुक्म दें अमीर मोमिन के जाओ से कत्ल करो। और आप गए तलवार निकाल कर देखा कि वो, उसने देखा कि आप आ रहे हैं और आपके चेहरे पर गजब की कैफियत है, तो वो फरार कर गया, एक खजूर के दरख्त पर चढ़ गया और खजूर के दरख्त पर आपने मसलन उसका तआक्कुब किया और उसने जो है फिर इस खौफ से कि मुझे यहाँ ऊपर आके पकड़ न लें तो छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो इसी शान नज़ूल में आया है कि पता चला कि वो तो इस काबिल ही नहीं है कि मसलन किसी के साथ इस तरह की आवेजिश कर सके, वो इस काबिल ही नहीं था। वो जब कूदा तो मसलन उसका लिबास हट गया और आमिर मोमिन ने बाद में आकर शहादत दी कि वो तो इस काबिल ही नहीं है, कोई काम करता। ये तमाम चीज़ें कहाँ आई हैं शान नज़ूल में, ये तमाम बातें तफासिर ने नकल की। ये जो शान नज़ूल है इसमें भी यानी कई सवाल या निशान हैं। सबसे पहली बात ये कि जनाब आयशा ने सरियन तोहमत लगाई, गवाह लेके आती, चार नहीं लेके आती तो रसूल गिरामी को चाहिए था कि जनाब आयशा पे हद जारी करें, उनके ऊपर 80 कोड़े लगने चाहिए, कहीं ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से मसलन एक बात जो साबित नहीं हुई अभी तोहमत की हद तक है, उसमें ये भी फैसला कर लिया जाए कि वो बद किरदार है साबित शुदा और उसका उसकी सजा कत्ल है और अमीर उलमोमिनीन को कह दिया जाए कि आप जाए कत्ल कर। भाई ये तमाम सवालिया निशान, एक नबी कैसे ये काम कर सकता है। ये आयतें, ये 11 से 16 तक की आयतें, इससे पहले जो कल हमने आयतें पढ़ी आपके सामने, उसमें साबित हुआ कि अगर कोई तोहमत लगाता है पाक दामन औरत को तो उसे चार गवाह पेश करना है, अगर पेश नहीं करेगा तो 80 कोड़े खाएगा। जब ये आयतें उस आयत के बाद वारिद हुई है तो इसका मतलब यह है कि कस्द और तोहमत लगाने का हुक्म साबित हो चुका था, और अगर साबित हो चुका था तो यहाँ पर हद जारी होनी चाहिए थी जनाब आयशा पर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई, वाकई नहीं हुई, तारीख ने नकल नहीं किया कि उन पर हद जारी हुई। यहाँ से ये बात सामने आती है कि ये दोनों जो शान नज़ूल हैं ये मन घड़त है, इनकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए कि अगर ये रसूल गिरामी की इसमत पर मसलन अंकुश न रखती तो फिर मुमकिन था कोई बात की जाए। इस शान नज़ूल में तो हजरत की इसमत भी जो है वो बर्बाद हो रही है, लिहाजा हम इस पर एतमाद नहीं कर सकते। हाँ मसला क्या है, ये आयतें किस सिलसिले में वाकई हुई? ये आयतें एक उमूमी माशरती मसले को बयान करती हैं। वो मसला ये है कि किसी भी माशरे में हो सकता है अफवाह फैले, कोई एक आदमी उसका सबब, बाद में चंद अफराद या कोई ग्रुप मिलकर मुनज़्ज़म तौर पर ठीक है अफवाह फैलाना शुरू करें और हक बातिल होने लगे, बातिल हक होने लगे। इस सूरत हाल में मोमिनीन को क्या करना चाहिए। खुदा उनके मुताल एक इस्लामी माशरे में अफवाहें अगर फैलना शुरू हों तो मोमिनीन की जिम्मेदारी को बयान कर रहा है उन्हें क्या करना चाहिए कि वो फौरन जो है मुतासर ना हो। किसी बात को सुनकर जब तक कि कोई सही शहादत ना हो उसकी, अफवाह पर कान ना धरा जाए। अफवाहें फैलाई जाती हैं, इश्यूज उठाए जाते हैं बहुत सी चीजों को छुपाने के लिए, बहुत से अफराद को माशरे में खराब करने के लिए, ताकि आइंदा जो है मसलन आइंदा कोई अहम रोल इसे मिलने वाला है तो ये उस मकाम पे ना आ सके, उसकी शख्सियत को तखरीब कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। ये तरीका होता है। हम अगर ऐसी सूरत हाल माशरे में हो तो कुरान करीम ने इन हालात में क्या रवैया अपनाया जाए इसकी तालीम इन रवायात में दी है, इन आयात में दी है कि इस पे कान न धरा जाए। तो हुमत या झूठ पर इमारत कायम न की जाए, झूठ को हकीकत न समझा जाए जब तक कि कोई बात साबित ना हो, यकीनन शहादत ना हो उस वक्त तक अफवाह पे कान न धरे जाए। आज आप देखेंगे ये बहुत अहम मसले हैं, आप माशरे में देखें कि अभी तो हम फकत एक शहर या एक मसलन मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया एक घराने के मानंद है। अगर आप इसको मुलाहिज़ा करें और देखें और माशरे की हम बात करें जनरल, हत्ता इस्लामी माशरे को भी अगर आप अभी मद्देनजर न रखें तो देखें आपके सामने मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह से आलमी मसलन शयातीन ने इश्यूज उठाकर छोटी 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 बातों को, ठीक है, झूठे गवाहों के साथ, झूठे मसलन एविडेंस और झूठी शहादात के साथ साबित कर कर आपके सामने मसलन यूएनओ से जो है वो रेगुलेशन पास कराया और आपके सामने इराक में हमला कर दिया। किस बहाने से कि जनाब यहाँ पर एटमी या केमिकल वेपन्स है, वेपन्स इतना गाया आखिर में इस झूठ को बुनियाद बनाकर आखिर तक 5 साल 6 साल तबाह बर्बाद कर दिया इराक को। आज तक केमिकल वेपन्स नहीं निकले वहाँ से। बस देखें अफवाहों के जरिए कैसे काम लिया जाता है। ये जो आज आप समझते हैं मीडिया वॉर है, ये अगर हम इस्लामी माशरे की बात करते हैं, दायरा ईमान की बात करते हैं तो उसमें खुदावंद आलम ने यह हुक्म दिया कि इस तरह की बातों पर कान न दिए जाए। अगर कोई इन बातों को बुनियाद बनाकर फैसले करने लगता है तो वो बहुतान अजीम में मुबतला है, गुनाह अजीम में मुबतला है और उसके असरात पड़ते हैं। जो दूसरों पे तोहमत लगाता है, बहुतान तराशी करता है, चाहे वो किसी फर्द पे लगाता हो, चाहे किसी नज़रिए या मसलन किसी फिक्र के मानने वालों पर लगाता हो ताकि उनकी मसलन माशरती इज्जत व आबरू को पामाल किया जाए। ये लोग जो हैं ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। मसलन अगर मैं मिसाल दूँ, कोई एक तंजीम जो वाकई खुदा के लिए काम कर रही है उसको तकरीब करने के लिए ये लोग ऐसे गाय इतना माशरे में कहें कि उसकी हैसियत को बर्बाद कर दें माशरे में, कि वो अगर दीन के लिए काम करती है तो वो मशकूक हो जाए लोगों की नज़र में। सुनने वालों की क्या जिम्मेदारी है, की जिम्मेदारी है कि इस तरह की तोहमतों पर असर न लें। ये वो मजमूई तौर पर बात है कि जो इन आयात में आई है। बस ये कोई वाकया नहीं है जो वाकया हुआ हो, हकीकतन हमारी निगाह में, अगरचे के जनाब आयशा से तमाम सुन्नी मुफस्सिरीन ने इस शायर मंजूर को नकल किया कि ये वाकया पेश आया और उसकी बुनियाद पर यह आयात नाज़िल हुई है। हम इन्हें नहीं मानते इस तरह की शायर मंजूर को जिसमें रसूल की इस्मत दाव पे लग जाए, जिसमें रसूल का किरदार मजरू हो जाए। हत्ता जनाब आयशा की तरफ नस्बत दी गई है, वाकया उनसे सादर हुई है, नहीं मालूम। ये बात बहुत सी बातें हैं कि जो झूठी बनाई गई है। अल्लामा सैयद मुर्तज़ा अस्करी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है 150 जाली सहाबी। 150 जाली साहब यानी ये वो लोग हैं जिनके नाम से रवायात नकल हुई हैं जबकि ये हकीकत में थे ही नहीं, वजूद ही नहीं रखते थे, ये साहबी नहीं थे। इनका जाली नाम इस्तेमाल कर जाली रवायात बनाई गई है। देखें कि मकतबे अबू सुफियान ने, अमीर शाम ने इस्लाम में किस कदर खतरनाक मिलावट करने की कोशिश की। चाली रवायात बनाई है अफराद के नाम से, ये सहाबी हैं, काला रसूलुल्लाह। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये वाकयात और ये शान मंजूर और इस तरह की चीजें, यहाँ तक कि इनकी जुरात यहाँ तक बढ़ी है कि आप देखें किताबों में मौजूद है, जो एक पहले भी एक इशू उठा था डॉक्टर एसरार के दुनिया से जाने से पहले किसी तकरीर में उन्होंने एक आयत है कि जिसको तदबीक किया था अमीरुल मोमिनीन पर, कि जिसका मफहूम यह है कि मसलन हालत मस्ती में नौज़ बिल्लाह इमाम नमाज पढ़े, हम ये उन्हीं रिवायात में से। अमीर शाम ने एक कमेटी बनाई हुई थी जिसका काम बाकायदा जाली रिवायात बनाना था। मुग़ीरा इब्न शोबा और अल्लास अबू हुरैरा और इब्न ज़ियाद, ये चार अफराद उस कमेटी के रुकन थे जिनका काम था रोजाना जाली रिवायात बनाना। ये जिन्होंने खुलाफा के बारे में जितनी रिवायात फजाइल खुलाफा में वारिद हुई हैं वो सब इन्होंने जारी बनाई, एक भी हकीकत नहीं रखी। हत्ता सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ये दोनों अमीरुल मोमिनीन के लक़ब में जो चुराए, ये अमीरुल मोमिनीन के अलकाब में से। उबैदुल्लाह अमृतसरी ने अपनी किताब अर्ज और मतालिब इला फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में इन दोनों इन लक़बों को अमीरुल मोमिनीन से नकल किया, ये अमीरुल मोमिनीन के अलकाब में से फारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर। अब आप देखें कि किस कदर मिलावट की गई है। अब अगर आज का जो मुसलमान गुमराह है तो ये उनकी कारिस्तानियों का नतीजा है, बस ये वो शान नज़ूल है। अगर आप इसको मान लें तो क्या हो, देखिए इससे सकाफत बनती है, ये बहुत अहम मसला है। आहिस्ता 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 मुफस्सिर आहिस्ता आहिस्ता मसलन क्या कहूँ, आज के दौर में वहाबी अकायद देवबंदी अकायद रखने वाले उलमा वो जब ऐसी बातें रसूल की नस्बत से पढ़ेंगे, उनका ईमान और एतक़ाद रसूल गिरामी की नस्बत से वो नहीं रहेगा जो हमारा है। हम इस्मत के कायल हैं, हम उन्हें हर ऐप से मुनज़्ज़ा समझते हैं, ठीक है। वो कहेंगे ऐसा तो ये हमारे जैसे तो थोड़ा सा फर्क था, एक इन पर वही नाजिल हुई, वो इस नुक्ते पे आ जाएंगे। जब इस नुक्ते पे आ जाएंगे तो फिर कुछ भी कह सकते हैं, लिहाजा किताबें उनकी किताबें हमारी नहीं। ये जो आज आप देखते हैं तौहीन रिसालत का कानून बनाया है, ये 90s में भी एक दफा बहुत जोर शोर से उछाला गया था पाकिस्तान में, और 1990 की दिहाई से पहले अंग्रेजों के दौर में भी ये तौहीन रसालत का मसला उठा था। अगरचे कि ये लोग ये चाहते थे कि तौहीन रसालत से जो है वो तौहीन साहबा और फिर अपने मकासद हासिल करें, अहले सुन्नत नहीं बस जो मुबरिज लोग हैं जिनकी गरज है, तो किसी ने उनको समझाया था कि आप तौहीन रसालत का कानून बनाएंगे, आपकी अपनी किताबों में इस कदर तौहीन रसालत है कि सारी किताबें आपको माफ करनी पड़ेगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में बहुत सी ऐसी रिवायात हैं जो तरक्की का तौहीन रसालत है, उसे आप साफ करेंगे। फिर 1990 की दिहाई में बाद शिया उलमा ने एक तहकीक, यानी उन्हीं तमाम चीज़ों को एक किताब में जमा किया, उसका नाम रखा तहकीकी दस्तावेज़ात। वो किताब मौजूद है, मेरे पास भी है उसकी फ़ोटो कॉपी, अगर आप नेट पे डालें ना तहकीकी दस्तावेज़ात तो वह आ जाएगी, आप देखें उसमें कि अहले सुन्नत की किस किताब में किस जगह किस तरीके से किस इबारत के ज़रिए उसका उर्दू तर्जुमा भी लिखा है, रसूल गिरामी की तौहीन की गई, और वो किताबें सब इनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं और ये पढ़ते हैं उसे और उसको वो क्या कहते हैं सही समझते हैं। तो आखिर में नतीजा क्या निकलेगा? ये निकलेगा जो है कि रसूल गिरामी की क्या फजीलत है, बस यही फजीलत है। लिहाजा ये डॉक्टर सरार जो है वो अपने दरसों में ये कहते थे कि रसूल गिरामी ये फरमाते थे कि मसलन खजूर के दरख्त के ऊपर जो कलम जनी की जाती है उसमें तुम मुझसे ज़्यादा माहिर हो, ये मसलन ज़रात का मसला है और ज़रात के मसले में ज़रूरी नहीं कि मैं बेहतर जानता हूँ तुमसे। अब अगर रसूल गिरामी आलम नहीं थे इस मसले के अंदर, दूसरा आलम था, तो इनको ये फिक्र नहीं है कि ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं, ये बात वही की तरफ भी सराहियत करेगी, ये बात जो है वो इन्हीं आयात में जो हमने कल आयतें पढ़ी उसमें मैंने अर्ज किया कि साद इब्ने अब्बादा के जो खजरज के कबीले का सरदार था और एक उम्मीदवार था आइंदा की क़यादत का कि जिसे कत्ल कराया गया बाद में, उसने इस मसले पर कि अगर कोई अपनी ज़ौजा के ऊपर तोहमत लगाए और चार गवाह ना हो, उसने एतराज़ किया था रसूल गिरामी के सामने कि मुझे कुरान की ये बात समझ में नहीं आई कि एक आदमी अपनी आंखों से देख रहा है ये वाकया लेकिन चार गवाह नहीं है, ये चार गवाह तलाश करने जाए तो ये वाकया ख़त्म हो जाएगा, ये कोई घंटों थोड़ी चलता है, तो फिर मैं इसे बयान करूं या ना करूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बयान करूं चार शायद नहीं है मुझे बात जारी हो जाएगी, इसका कोई राय हल होना चाहिए, तो इसका राय हल वो कल अपने आपके सामने लयान की सूरत में बयान किया कि आयतें आगे बढ़ी और आयतों ने लयान का मसला बयान किया और इसका राय हल पेश किया। और देखें कि साद इब्ने उबादा ने एतराज किया नहीं किया, आयत पर एतराज किया, उसकी समझ में नहीं आई बात। ये मिजाज अगर कहीं आहिस्ता आहिस्ता फैल जाए तो नतीजे क्या होगा? रसूल गिरामी की शख्सियत जो है वो इसमत अशकूक हो जाएगी, बाकी नहीं रहेगी, लिहाजा इनके लिए आसान हो जाएगा रसूल गिरामी के साहब को कबूल करना। इसी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है कि सहन नबी किस सलाह, नबी ने नमाज में साफ किया, किस नमाज में किया है? सुबह की थी, दोपहर की थी, जोर की थी, असर की थी, मगरिब की थी, इशा की थी, इसमें अख्तलाफ है। इजाफा किया नमाज में या कमी की, इसमें भी इख्तलाफ। और इस कदर इख्तलाफी रिवायत किससे नकल हुई है? रसूल ने तो नकल नहीं की, रसूल से तो नकल नहीं हुई, खाल रसूलुल्लाह तो नहीं है, किसी ने नकल की कि कोई खड़ा हो गया नमाज के बाद कहा कि आपने नमाज में साफ किया, इस वाक्य को नकल किया गया। उसी रिवायत में रसूल गिरामी ने फरमाया कि कोई ऐसी शय वाकई नहीं हुई, यानी मैंने साफ नहीं किया, उसके बावजूद इस साफ को कबूल करते करते जायजा साफ करते। रसूल उसी रिवायत में कह रहे हैं कि मैंने साफ नहीं किया, रसूल का कलाम कबूल नहीं है, उस एतराज करने वाले का कलाम कबूल है, इससे ज्यादा पस्ती और क्या है? बस मिजाज जहां पर तखरीब हो जाए, जिनके मिजाज में ही कची हो, ठीक है, जिनकी बुनियाद ही खराब हो, तो उसका नतीजा ही है। बस ये वो पस मंजर है इन आयात का जो आई है, इन लजीन जाऊ बिल्फ्क, जो लोग तोहमत माशरे में राइज करने वाले हैं, ये तुम्ही लोगों में से हैं, इनको अपने लिए शर न समझो बल्कि तुम्हारे लिए खैर है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जिसके जवाब में आयतें नाजिल हुई और उन्होंने इस सकाफत के मुकाबले में जो इस्लामी सकाफत है उसे बयान किया, उसे अपनाए। लिकुल इमरान बिन हुमा मक्तसबा मिन अल-इफ, हाँ जो भी शख्स अफवाह का शिकार होता है वो गुनाहगार है। वल्लज़ी तवल्ला किबरा मिन्हु, और जो इसकी क़यादत करता है, इसको फैलाने में मेन रोल अदा करता है, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए शदीद अज़ाब है। लौला इस समय तुम ज़न्नल मोमिनून वल मोमिनात बिअन्फुसिहिम खैर, जब मोमिन मोमिनात इस तरह की तोहमतें सुनते हैं तो उनको नहीं चाहिए था कि वो इस में मनफी रोल अदा करने की बजाय मुस्बत रोल अदा कर दें और इसमें खैर तलाश करते, कहते कि ये बात सही नहीं है, इस तरह से तोहमत को ना फैलाओ, रोकते उसे माशरे में, ये काम हमारा अंजाम देना चाहिए था उन्हें। वकालु हादा इफ्कुन मुबीन, और ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहते कि ये तो खुला बहुतान है, ऐसा काम ना किया जाए माशरे में। वलाउला जाओ अलैहि बिअरबअत शुहदा, अब उनको चाहिए कि चार गवाह लेके आए, अगर ये जिसने अफवाह फैलाई चार गवाह लाए, ठीक है, इस तरह की तोहमत अगर लगाई है, इशू बनाया किसी की पाकदामनी पर अंगुश दबाई की है तो चार गवाह लाए। फैजालम या तो बिशुहदा, अगर चार गवाह नहीं ला सकते, ठीक है, फ़ौलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तो ये खुदा के नज़दीक यही लोग झूठे हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई है, अफवाहें फैलाई। वलाउला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अलीम, खुदा का फजल ना होता और उसकी रहमत दुनिया और आखरत में तुम ऐ मुसलमानों तुम पर ना होती तो तुम अपने इन असन अफवाहों और तोहमत लगाने की वजह से अजाब अजीम में मुबतला हो जाते हैं। खुदावंद आलम ने बताया कि ऐसा काम न करो और अजाब अजीम में मुबतला ना हो, फिर भी जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए क्या है? वाकई जो लोग इस तरह की तोहमत माशरे में, चाहे वो फर्दी हों चाहे इज्तमाही नौयत की हों, इसके बहुत बुरे असरात हैं, बहुत बुरे असरात। वो तोहमत लगाने वाला एक ना एक दिन खुद किसी मसले में गिरफ्तार होता है उसी माशरे में। खुदावंद आलम ने रोका कि ये काम ना करो, ये समझो कि आज तुम अफवाह फैला रहे हो किसी के खिलाफ, तुम्हारी बारी नहीं आई, तुम्हारी बारी आएगी, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो इससे भी सख्त आएगी। लिहाजा मुआशरा मजमूई तौर पर इस ऐप से पाक रहे, दूर रहे। जैसे ही इस तरह की अफवाह फैलाई जाने की कोशिश की जाए उसका मुकाबला करें, कोई पॉजिटिव पॉइंट तलाश करें उसके लिए, ठीक है, और कोशिश करें कि जब तक चार गवाह नहीं है उसे कबूल ना करें, अपने रवैये में उस शख्स की नस्बत से तब्दीली ना लाए, उसको मुजरिम ना समझने लगे। रवैये में तब्दीली आ जाए अगर, इसका मतलब यह है कि अफवाह काम कर गई, किसी की नस्बत अफवाह ने अपना काम कर दिया। हालांकि दीन कहता है कि उस पर कान ना धरे जाए। इस तलक्काउन बेअलसनतिकुम व तकुलून बेअफवाहिम अलैस लकुम बिहि इल्म, इसलिए कि आप जबानों में इसे दोहराते हैं, नकल करते हैं, आगे पीछे लोगों को बताते हैं, जबकि आप को इसका इल्म नहीं है। व तहसबूनहु हय्यनन, और इस अफवाह फैलाने को आप समझते हैं कि कोई मसलन मामूली काम है, नहीं, ये कोई मामूली चीज नहीं। वाहवा इंदल्लाह अज़ीम, खुदा के नज़दीक ये बहुत अजीम गुनाह है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। वलाउला इस समय तुम हो कुल तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, और जब ये आप तक बात पहुंची थी तो आपको कहना चाहिए था कि हमें इस कलाम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ये बात सही नहीं है। सुभान का आज़ा बहतान मदद, और ये कहना चाहिए कि ये एक बहतान है, एक अजीम झूठ है, इससे परहेज किया जाए मुआशरे में। बस देखें, खुदा वंदे मुताल चाहता है कि मुआशरे में मुसलमानों के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान जो रवाबित हैं वो पाकीज़गी और तहारत पर मुश्तमिल हों, मबनी हों, कायम हों, ना अफवाहों, ना शक व शुबह और तरदीद, और एक दूसरे के साथ मसलन ऐसे माहौल में जिसमें एक दूसरे को बुरी निगाह से देखा जाए। ये इस तरह के काम जो है मुआशरे में एतमाद की फिजा को और बाहमी रवाबित को मुकद्दर कर देते हैं, उसे नापाक कर देते हैं। खुदावंद आलम चाहता है कि मुआशरा पाकीज़ा रहे, मुसलमानों और मोमिनीन के दरमियान जो रवाबित है वो शफाफ रहे, हर तरह की बुराई से पाक रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।